ओम शांति। 24 नंबर ग्रेस्टर में 4 पेज पर 3 11 90 87 क्लास रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मुझे मुझे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, बस मात पिता हम बालक तेरे, वो खेलते आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी क्योंकि ये है कलयुग की पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए। बात कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्म को नहीं जानते कि कितने जन्म पाए तो बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म, एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है, लाख के हिसाब से तो सच्ची करके बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परमधाम में याद करते हैं, अभी तो पराये देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। माना शिव से संबंध जोड़ने की बात है, संबंध से सुख होता है, रावण से तो दुख मिलता है, तो दुख का तो बंधन हो जाता, तो शिव से संबंध जोड़ा जाता है, रावण से संबंध नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि दुख होता है बंधन का और सुख होता है संबंध के लिए, तो रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, पांच विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? महिमा किसकी की जाती है, सुख देने वाले की या दुख देने वाले की? सुख देने वाले की महिमा करते हैं। देह अभिमान तो बड़ी भारी बीमारी है, हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी और हम विश्व के मालिक रहे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तुम जानते हो हम शिव बाबा से पढ़ते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि ने कहा भी ऐसे नहीं कह सकेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखाएंगे। क्या कहा, इस सत्संग की क्या विशेषता है? ये है सत्संग, एक सत्य का संग, क्योंकि गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, वही सत्य है। तो जो सत्य है उस सत्य का संग हम करते हैं, संग मिले और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि सत्य का संग है। प्रैक्टिकल में समझे गए, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल में संग किसका होता है? संग तो होता है देहधारियों का, और यहां प्रैक्टिकल में हम समझते हैं कि हमको आकर के राजयोग परमात्मा बाप स्वयं सिखलाते हैं। राजा के लिए पढ़ाएंगे, वो मनुष्य पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, कलेक्टर मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन राजा कोई नहीं बनाता। राजाई की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाई, लेकिन राजाओं को जो शासन करने की युक्ति सिखाई है वो कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी। क्योंकि कलयुग की दुनिया में सब आकर के आधीन बन जाते माया के। तो जो आधीन बन जाते हैं वो दूसरों को स्वाधीन कैसे बनेंगे। तो शिव बाबा की सेवा राजयोग और कोई सिखला ही नहीं सकता। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए। क्या कहा? शिव बाबा राजा बनता है क्या? जब शिव बाबा राजा नहीं बनता तो राजा कैसे बनाएगा? बाबा है तो जरूर साकार है, नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसको बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कब कहें? जब साकार शरीर में प्रवेश करें तो दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। उनमें एक प्यारा संबंध बाबा भी है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। तो राजा बनाने वाला शिव ज्योति बिंदु तो है, पढ़ाई तो वही पढ़ाता है राजा बनाने की, लेकिन प्रैक्टिकल में भी कोई राजा चाहिए जो राजाओं को राजाई की पढ़ाई पढ़ाए। राजा बनने वाली आत्माओं को सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाएंगे ना, तो पढ़ाने वाला भी सर्जन ही चाहिए। यहाँ कौन सी सर्जरी है? दुनिया में जो सर्जन होते हैं वो भी चीर फाड़ करके शरीर को नया बनाए देते हैं। वो तो है हद के सर्जन, एक जन्म के लिए शरीर को थोड़े समय के लिए सुंदर बनाते हैं, फिर बीमारी कर जाती है। और ये अविनाशी सर्जन तो ऐसी दवाई देते हैं, ऐसी सर्जरी करते हैं जो 21 जन्म के लिए हमारी काया निरोगी बन जाती है। क्योंकि वो तो पत्तों को पानी देते हैं, वो नहीं समझते कि शरीर को भी चलाने वाली आत्मा है। आत्मा सुधर जाएगी तो शरीर भी सुधर जाएगा, आत्मा बिगड़ती है तो शरीर भी बिगड़ता है। तो बीज का पहले सुधार चाहिए, बीज है आत्मा और वृक्ष है शरीर। तो सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाते हैं। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? कैसा सिरताज? डबल सिरताज। कौन कौन सा सिर पर ताज? डबल, एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा इथुन ताज, जिसे कहते हैं दुनिया में जो स्थूल ताज राजाएं धारण करते हैं, कोई बड़ा ताज धारण करते, कोई छोटा ताज धारण करते थे, तो वो है जितनी बड़ी राजाई उतना बड़ा ताज। ये चित्रों में ऐसे दिखाते हैं। तो बाप आकर के ज्यादा जिम्मेवारी जो यज्ञ की उठाता है वो उतना बड़ा राजा बन जाता है, ये नियम बनाया। और ज्ञान यज्ञ की जिम्मेवारी भी कौन सी? यज्ञ की जिम्मेवारी क्या होगी? ज्ञान यज्ञ किस लिए रचा गया? ज्ञान यज्ञ रचा गया पुरानी दुनिया खलास हो और नई दुनिया की स्थापना हो, पवित्र दुनिया बने और अपवित्र दुनिया खलास हो जाए। तो ये जिम्मेवारी जो जितनी उठाता है उसको उतना बड़ा प्योरिटी का भी ताज मिलता है और उतना ही बड़ा जिम्मेवारी का भी ताज मिलता है। तो ये डबल सिरताज बनाने वाला आएगा कहाँ से जो हमको डबल सिरताज बनाए? कहाँ से आएगा? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज प्रश्न को रख दिया है। किसलिए रख दिया है? कि डबल सिरताज बनने वाले तो राजाएं ही होते हैं और राजाएं साकार होते हैं तो उनको बनाने वाला भी साकार ही चाहिए। अब कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? कौन से कृष्ण? सचिव का कृष्ण कैसे पढ़ाएगा? यह संगम युग में कृष्ण वाली सोल ब्रह्मा के रूप में कैसे पढ़ाएगी? तो कैसे का जवाब क्या हुआ कि वही कृष्ण की सोल जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती रही, वही कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके प्रवृत्ति मार्ग में रहकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाती, खुद डबल सिरताज बनती है और बच्चों को बनाती, बाप सहयोगी बन जाते हैं। तो कौन से किस्म की बात है, सच भी किस्म की बात है या संगमी भी किस्म की बात है? संगमी किस्म की बात हुई। तो सारा मुझारा गीता की बात पर है। वो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, सोला कला संपूर्ण। जरूर बात संगम पर आए होंगे, आकर राजा ही स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। हर देश से बाप, दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ के ताज नहीं है, है? बादशाह कहते हैं किसको, परमात्मा को क्या कहते हैं, बादशाह। लेकिन वो कहा जाता है बादशाह, लेकिन उसको ताज नहीं है, बेताज बादशाह। नेहरू जी को लोग क्या कहते थे, भारत का बेताज बादशाह। तो बाबा भी कोई ताज धारण नहीं करते, वो कभी राजा ही पाते नहीं है। उनको तो भक्ति मार्ग में भी फकीर का फकीर दिखाया है, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता, न मैं राजा बनता हूँ न मैं रंक बनता हूँ। भारतवासी राव थे अब रंक हैं, तुम भी डबल सिरताज थे, अब वो डबल सिरताज कहाँ है? अब उनको बाबा डबल सिरताज बनाते हैं, खुद नहीं बनते। वो बैरिस्टर इंजीनियर आदि खुद बनते हैं फिर औरों को बनाते हैं। तुम डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए ना, डबल बातें कर लो। ये दो बातें क्यों की, ये हमारे बेहद के बाप दो हैं, एक मनुष्यों का पिता एडम और दूसरा आत्माओं का पिता शिव। तो कौन बादशाह बनता है और कौन नहीं बादशाह बनता है? शिव बाबा बादशाह नहीं बनता, वो जब तक उस तन में प्रवेश होकर के रहता है तब तक उसका बैगरी पार्ट है। तो साकार की बात हुई कि वो बादशाह बनता है और बच्चों को बनाता है, क्योंकि प्रजापिता के लिए तो फिर भी सारी प्रजा बच्चे की माफी, प्रजा कहा ही जाता है बच्चों को रखना को। इसलिए बोला तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज चाहिए, जिसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज भी हो। कौन सी जिम्मेवारी, ज्ञान यज्ञ किसने स्थापन किया, नाम यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में ही रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना हुई, क्योंकि बोला है स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये पैरेलल चलते हैं दोनों काम, एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश स्वतः होता जाएगा। डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन स्वतः हो जाता है। तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। योग कब लगेगा? जब बनाने वाला होगा वैसा तो योग ऑटोमेटिक लगेगा। और बनाने वाला सिर्फ बिंदु दिखा दिया तो बिंदु कैसे बनाएगा? बिंदु प्रैक्टिकल थोड़े हुआ जब तक शरीर धारण नहीं करे। इसलिए बोला कि तुम्हारा योग भी कब लगे? जब बनाने वाला डबल सिरताज भी हो। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा, जैसा संग करेंगे वैसा बनेंगे। बिंदु को याद करने वाले क्या बनेंगे? बिंदु बनेंगे तो कहां पड़े रहेंगे? दान धाम, शांति धाम, परम धाम में पड़े रहेंगे। तो जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने सिर्फ निराकार को याद किया, उन्होंने साकार को भगवान के रूप में नहीं पहचाना। तो जितने भी विधर्मी हैं, धर्म पिताएं, वो सब परम धाम में पड़े रहते। क्यों पड़े रहते? कि उन्होंने बुद्धि से संग किसका लिया? निराकार का संकर्म लिया। तो निराकारी धाम में उनको पड़ा रहना पड़ता, उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने सुख का संबंध नहीं जोड़ा। संबंध जोड़े भी तो किसके साथ जोड़े? रावण जो दुख देने वाला है, तो उसे संबंध नहीं कहेंगे, वो तो बंधन हो गया। तो बंधन वाली दुनिया में उनका आना होता है, सुखों की संबंध वाली दुनिया में, पैराडाइज में उनका आना नहीं होता। सन्यासी कोशिश करके सन्यासी बना लेंगे क्या था? जब तक सन्यास के संस्कार हैं तो दूसरों को भी क्या बनेंगे? खुद भी सन्यासी बनेंगे। और कोशिश करके शब्द जोड़ा हुआ है क्या? सन्यासी होगा तो फिर क्या बनेगा? सन्यासी। और साधारण तरीके से नहीं, कोशिश करेगा कि हमारी जमात बढ़े। तुम गृहस्थी और वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर तो ठहरे नहीं। जो सन्यासियों के फॉलोअर हैं उनसे कहा कि तुम हो गृहस्थी और तुम गुरु बनाया किसको? सन्यासी को। तो तुम उसके फॉलोअर कैसे हुए? फॉलोअर तो तुम तब कहे जाओ कि जब तुम्हारा गुरु लंगोटी पहने हुए है, कफनी पहने है, तो तुम भी कफनी पहनो, सब त्याग कर दो। तो सब तो त्याग कर नहीं सकते, तो तुम फॉलोअर कहे के फॉलोअर तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी माथा मोड़ने वाले, तुम तो फॉलो करते नहीं, तुम भी माथा मोड़ो, सर घुटाओ, तो सन्यासी के फॉलोअर बनो। तो तुम फॉलोअर क्यों कहते हो अपने को? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। क्या? झट कपड़ा उतारे और कफनी पहन ली। कफनी नाम क्यों दिया? जब मरते हैं तो कौन सा कपड़ा उतर डालते हैं? कफन। उसका नाम क्या है? कफन। सफेद कपड़ा डालते हैं क्योंकि पुरुष ही सन्यासी बनते हैं। तो देह भान छूटा माना सफेद कपड़ा हुआ। जब तक देहभान है तब तक रंगीनी चढ़ी हुई है। काला रंग तमो प्रधान होता है, दूसरे रंग रजो प्रधान होते हैं, और सफेद रंग सात्विकता का सूचक। वो तो काला बना ना, काला बना तो काली कमरिया, काली कमरिया ओढ़ी ना, काली कमली वाले कहा जाता है, तो शरीर रूपी वस्त्र कैसा पहना, काला पहना। तो यही तो राज है कि कृष्ण जब काली कमली वाला है, काला कपड़ा पहनने वाला है, फिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? कपड़ा वो पुरुषार्थ करता है या आत्मा पुरुषार्थ करती है? आत्मा पुरुषार्थ करती है, कपड़ा पुरुषार्थ नहीं करता है। अगर मन बुद्धि एक तरफ लगी रहे और शरीर कोयले में पड़ा रहे तो आत्मा शुद्ध बनेगी या अपवित्र बनेगी? तो बस यही राज है, इसीलिए पूजा होती है। किसकी? काले कृष्ण की भी। नहीं तो जो काला है, अपवित्र है, उसकी पूजा क्यों होती है? जगन्नाथ के मंदिर में कितने गंदे चित्र दिखाए गए हैं, देखने वालों को गंदे लगते हैं, क्योंकि देह अभिमानी है, फिर उनकी पूजा क्यों होती है? समझने का फेर है। तो बताया, गुरु का काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल, शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहां से आती है? पांच तत्वों की दुनिया से आती है, या जो दुनिया पांच तत्वों से रहते हैं वहां से आती है? परमधाम निराकारी दुनिया से आती है ना, वहां बहुत आत्माएं रहती है। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती। पांच तत्वों से ही सुख होता है और पांच तत्वों से ही दुख होता है। शरीर धारण करती है आत्मा, तब ही सुख होता है और शरीर से ही दुख होता है, नहीं तो आत्मा सुख और दुख भोग नहीं सकती। तो ये अच्छी रीति पक्का करना है कि पांच तत्वों की पकड़ से परे जब तक आत्मा नहीं बनती है, तब तक दुख के बंधन से छूट नहीं सकती। अभी है तो दुख का बंधन ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम सुख के संबंध में, या सुख की दुनिया है, सब दुखी, सबको दुख का बंधन है। इस दुनिया में कोई ऐसे मनुष्य मात्र नहीं है जो दुखी न हो। दूसरा पेज, हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले और यहाँ नाटकशाला है, यहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में भी सूर्य चांद स्टार ये बत्तियां आदि बहुत है। तो जो जड़ दुनिया है, जड़ तुम्हें दुनिया, उसमें भी बत्तियां हैं। और ये जो चैतन्य आत्माओं की दुनिया है, इसमें भी चमकने वाली चैतन्य बत्ती है। कोई आत्मा सूर्य का पार्ट बजाने वाली, कोई आत्मा चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली, और कोई फिर लकी सितारे हैं, लकी स्टार से हैं। उनमें कोई स्टार ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है। कहां की यादगार है ये सब? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया। कोई स्टार ऐसे हैं थोड़ा चक्कर काटते हैं, थोड़ा निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं। कोई ऐसे हैं जो जाति निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं। तो ये जितने भी सूरज चांद सितारे हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। ये है देह की नाटकशाला। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर के फिर लौट भी आए। कहाँ जाकर के उन सूरज चांद सितारों को क्रॉस करके जाएं और फिर वापस आएं, इतना पेट्रोल नहीं डाल सकते, इतना दूर जा ही नहीं सकते और नहीं जा सकते मनुष्य आत्मा। तो बाहर की मनुष्य आत्माओं की बात हुई, अब ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में जा सकते हैं है? जो खुद जा सकता है वो दूसरों को भी तो ले जा सकता है। जो खुद पांच तत्वों के पार जाएगा वो दूसरों को नहीं ले जा सकता क्या है? मन बुद्धि से जाना है, लेकिन मन बुद्धि से जाने वाले पांच तत्वों से क्रॉस हो जाते हैं, पांच तत्वों से पार हो जाते हैं, नहीं होते। तो बताया कि इसके लिए काई चीज की जरूरत है, पेट्रोल, एक होता डीजल, डी डायरेक्ट जल, जल डायरेक्ट ज्ञान जल, लेकिन एरोप्लेन में डीजल नहीं डाला जाता, क्या डालते हैं? पेट्रोल, रिफाइंड। तो इतना पेट्रोल किसी के पास नहीं है जो इतनी पावर भरे, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है तो जाएंगे कहां से? तो जाकर के फिर लौट आती, इतना दूर जा ही नहीं सकते। इतना दूर जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? इतना पेट्रोल चाहिए जिसके रखने के लिए जगह भी नहीं बना सकते। वो समझते हैं इतने माइल तक है, हम लौट नहीं पाएंगे तो गिर पड़ेंगे, समुद्र का व आकाश तत्व का कोई अंत नहीं पा सकता, बाकी तीन तत्वों का अंत पा सकते हैं, लेकिन आकाश का और समुद्र का किसी ने अंत, समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की गहराइयों का किसी ने अंत नहीं पाया। तो अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, ज्ञान सागर का अंत देते हैं, और क्या देते हैं? आकाश जो सबसे ऊंचा कहा जाता है, तत्वों में सबसे ऊंचा तत्व कौन सा? आकाश, जिसकी ऊंचाई आज तक किसी ने नाप नहीं पाई। तो बाप तुमको अपनी ऊंचाई का और अपनी गहराई का अंत देते हैं, क्या अंत देते हैं? कि सागर में रतन भी है अकूत और सागर में जहर भी है, एक साथ दोनों चीजें हैं, अकूत जहर भरा पड़ा है, कचरा भी भरा पड़ा है और रतन भी भरे पड़े हैं। तुमको क्या चाहिए? रतन चाहिए। तो जिनको रतन चाहिए वो रतन निकालने में अपनी बुद्धि लगाएंगे, और जिनको जहर चाहिए, कचरा चाहिए, वो अपनी बुद्धि काय में लगाएंगे, कचरे में लगाएंगे। तो उनको क्या मिलेगा? उनको कचरा या जहर ही मिलेगा जिंदगी में, और जिन्होंने रतन निकालने के लिए बुद्धि लगाई उनकी बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा हीरे समान चमकेगी, हीरा बनेगी और उनकी कौड़ी बनेगी। कौड़ी में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा, कौड़ी समान जीवन, और हीरा क्या होता है? रोशनी ही रोशनी। तो बाप तुमको अपना अंत देते हैं, उनके पास तो इतना पेट्रोल नहीं है कि वो सागर का और समुद्र का अंत पा सकें, और बाप तुमको अपना अंत दे देते। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा राकेट है, क्या चीज राकेट है? आत्मा। तुम आत्मा या पवित्र बन जाएंगी तो फिर राकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कब उड़ेंगे? जब आत्मा में प्योरिटी आएगी परमात्मा बाप के संग के रंग से। तो जैसे बाप में इतना पेट्रोल है, कितना اتنا پیٹرول ہے باپ کے پاس کہ سورج چاند ستاروں کی دنیا سے خود بھی پار جاتا ہے اور بچوں کو بھی لے جاتا ہے. تو تمہارے پاس بھی اتنا پیٹرول ہوگا کہ تم سورج چاند ستاروں کی دنیا سے
پانچ میں تیس پر تین گیارہ نبے کا پیٹ گلا دوسرے پیٹ کی چھٹی لیں. ابھی باپ تم کو اپنا انت دیتے ہیں. جو تم آتمائیں پوتر بن جائیں گی تو رات کی مثل کھولنے لگ پڑیں گی. ایک اتنا چھوٹا رات دیتے سورج چاند سے بھی اس پار مول وطن میں چلے جائیں. سورج چاند کا انتر پانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. کون؟ صرف باہر کی دنیا والے. براہمنوں کی دنیا میں بھی ایسے رہتے ہیں جو سورج کا انتر پانا چاہتے ہیں, ساگر کی گہرائیوں کو ناپنا چاہتے ہیں لیکن ناپ نہیں سکتے. دیکھنا چاہتے ہیں کس میں کیا ہے اور کتنا گہرا ہے اور کتنا اونچا ہے, لیکن وہ کچرا ہی نکال کے رہ جاتے ہیں. بہت کوشش کرتے, چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتے, سمجھتے ہیں ہم چاند پر پلاٹ لیں گے. جو سورج پر پلاٹ خریدنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سورج کے پاس بھی نہیں جائیں گے. آپ چاند کے اوپر ڈیرا جما کے بیٹھیں گے تو بس اسی کی گود میں سرمائے دیں. تو ڈرتے ہیں سورج سے, یہ جلائے دے گا. اور چاند تو شیتل ہوتا ہے تو چندرما کے پرکاش میں تو کیڑے مکوڑے بھی پلتے ہیں. یہ چار سال دور سے دیکھنے میں کتنے چھوٹے آتے ہیں. جو چمکنے والے ستارے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں تو چھوٹے نظر آتے ہیں, جب پاس میں پہنچتے ہیں تو بڑے نظر آتے ہیں. کون سے ستاروں کی بات ہے؟ یہ چیتنیہ ستاروں کی بات ہے جو آسمان میں چمکتے ہیں. کہتے ہیں 9 لاکھ ستارے ہیں آسمان میں. یہ 9 لاکھ ایسی شیش ساتمے ہیں 84 کے چکر میں آنے والی, آل راؤنڈ پارٹ بجانے والی, جو دور سے دیکھی جائیں گی تو بہت چھوٹی نظر آئیں گی, اور ان کو نزدیک سے دیکھو تو ان کی وشالتا کا پتہ لگتا ہے. ہیں تو بہت بڑے, جیسے تم پتنگ اڑاتے ہو تو اوپر میں کتنی چھوٹی چھوٹی دکھائی پڑتی ہے. باپ کہتے ہیں تمہاری آترما تو سب سے تیکھی ہے, ایک اندر میں ایک شریر سے نکل دوسرے گرہ میں جائے پرویش کرتی ہے. اس کا کرموں کا حساب کتاب لندن میں ہے تو سیکنڈ میں لندن میں جا کر کے جنم لے گی کیا؟ کہاں چلی جائے گی؟ لندن میں چلی جائے گی. جیسے مما کے لیے سندیشیوں نے کہا, پہلے کہا نیپال میں جنم لیا, پھر کہاں کہا لندن میں ہے مما, پھر کہاں کہا ابھی کہا دلی جو میں. سیکنڈ میں ایک شریر چھوڑ دوسرے گرب میں پرویش کرتی ہے. سیکنڈ میں جیون مکتی کرائی ہوئی ہے نا, بچہ گرب سے نکلا اور مالک بنا. بارش ہو رہی ہے, مما کی آتما جب تک گپت گرب میں ہے تب تک کوئی نہیں جان سکتا ये क्या बनने वाली है, और जब गुप्त गर्भ से बाहर आती है तो सबको पता चल जाता है कि ये क्या बनने वाला है। राजा का बच्चा जन्म लेगा तो लोग क्या कहेंगे, अब ये राजा बनने वाला है। तो वारिस हो ही गया, राजा के यहाँ जन्म लिया, बाहर निकला और वारिस बन गया। जब तक गुप्त है तब तक कुछ पता नहीं। तो बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गया। क्या यहाँ कौन सा जन्म होता है, यह है मर्जी का जन्म। पुरानी दुनिया के लगाव से मर गए और बाप के बच्चे बन गए। पुरानी देह और देह के संबंधों से डिटैच हो जाएं और बाप के संबंध से अटैच हो जाएं। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी जितनी स्टेज बनती है ऐसे फॉलोअर बनते हैं। झूठे सन्यासियों के झूठे फॉलोअर तो निकल नहीं, कैसे फॉलोअर, सच्चे फॉलोअर। रामकृष्ण की आत्मा जब त्यागी है तो बच्चों को भी क्या बनना पड़े, ऐसा ही त्यागी बनना पड़े। तो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है और मालिक बन जाता है। तो यहाँ भी कौन सा गर्भ है, यहाँ भी ज्ञान गर्भ है, गर्भ महल। तो बच्चे ने भी बाप को जाना, बाप को पहचान लिया, गोया विश्व के मालिक बन गए। देह का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बना दे, ऐसे नहीं कि कोई देहधारी धर्म गुरु या दादा दीदी दादा प्रजापिता के बगैर कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व का मालिक न बन सकता है और न दूसरों को बना सकता है। बीच में वो दलाल जरूर चाहिए, कौन, प्रजापिता ब्रह्म। क्योंकि जो विश्व का मालिक बनेगा वो दूसरों को बनाएगा। एक बनेगा लेकिन नंबर वार और भी तो बनेंगे, एक 100% बनेगा, बाकी नंबर वार भी तो बनेंगे ना। वो प्रत्यक्षता कहाँ होगी, वो प्रत्यक्षता तो संग नहीं उतर रही होगी ना। क्यों, इसका प्रूफ क्या, ऐसी प्रत्यक्षता हुई है कभी? इसका प्रूफ है माला। सब धर्मों में माला घुमाई जाती है, माला के मणकों को स्मरण करते हैं, सिमरण करते हैं। तो यादगार कहाँ की, इसकी संगम युक्ति यादगार है। जब कयामत का समय होगा तो वो गुप्त ज्ञान गर्भ में रहने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, प्रत्यक्षता उसकी जन्म लेंगी और उनके मणकों के नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। कौन किस नंबर का विश्व का मालिक बनने वाला है वो सब यहाँ क्लियर हुआ। तो तुम बच्चों को आशा खुशी होनी चाहिए कि बाप आकर हमको विश्व का मालिक बनाते। कौन से बाप, बेहद का बाप, 500 करोड़ मनुष्यों का बाप। स्कूल में बैरिस्टर पढ़ते तो बैरिस्टर बन गए ना। यहाँ तुम डबल से सात बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल से सात जरूर बनेंगे, फिर भी सब में तो आएंगे। नहीं पास होंगे तो भी स्वर्ग में तो आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदर वहां ही रहते थे, कहां, यहाँ बात किसकी हो रही है, क्या हो रही है। डबल से ताज जरूर बनेंगे, तुम पढ़ते ही हो डबल से ताज बनने के लिए, किससे पढ़ते हो, बैरिस्टर बैरिस्टर बनाएगा तो डबल से ताज कौन बनाएगा, डबल से ताज होगा तो डबल से ताज बनाएगा ना। तो बताया डबल से ताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे। अगर डबल से ताज न भी बने तो भी प्रजा के रूप में स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते, कहां, बात कहां की हो रही, घर की बात हो रही है ना, तो कौन से बाप वहां रहते, साकार बाप की बात नहीं है। ज्योतिबिंदु से भी तो वहां जाता नहीं, तो वो बात फादर कहेंगे तो भी व्यक्ति जरूर ऊपर जाएगी। माना स्वर्ग ऊंची स्टेज में होता है, स्वर्ग नीची स्टेज में नहीं होता। और श्राद्ध की ऊंची स्टेज होगी तो स्वर्गीय सुख का अनुभव करेगी, इससे संग्रम युग देगी। और पुरुषार्थ की नीची स्टेज होगी, देह और देह की धरणी से चिपकी हुई बुद्धि होगी, तो सुख की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकती। तुम जानते हो ग्रैंडफादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट भी होगा ना, अभी पार्ट बजाए रहे। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर के फूल बनाते, क्या बनाते हैं, दुखदाई से सुखदाई बनाते हैं। दुखदाई यहाँ कलयुग में सुखदाई सत्य गुना बनाएंगे, संगम युग में ही बाप आकर के, ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ाए जाए फिर हम दुखदाई से सुखदाई बनते रहेंगे अपने आप, नहीं, बाप खुद आकर के इसी संगम युग में ही हमको दुखदाई से सुखदाई फूल बनाते, तो उनको बागवान भी कहा जाता है। तो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को बाबा आया हुआ है इस पराये देश में, जो भारत देश अपना देश नहीं है, पराया देश है क्या है? भारत अपना देश नहीं है क्योंकि रावण का राज्य, जिसका राज्य है उसी का देश है। तो पराये देश में आए हुए दूर देश का रहने वाला वो तो बात ही है, और आत्माएं भी वहां रहती है, कहां दूर देश जहां से पार्ट बजाने आती है। देश पराये ये अर्थ और कोई नहीं जानता है, कहां पार्ट बजाने आए हैं, पराये देश में, देश अपना नहीं है, अपना देश कौन सा है, शांति धाम, ट्रीट होम, साइलेंस होम, जहां निसंकल्पी स्टेज रहती है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो तत्पर कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं, आत्मा इंप्योर होने से छोड़ नहीं सकते, कबूरे जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, कचरा हटता जाएगा, कट उतरती जाएगी, उतनी आत्मा हल्की होगी और ऊंची उठेगी। प्योर बनने बिगर वापिस नहीं जा सकती। तकरीबन 52 में एक ही बात को कहा जाता है, जो पतित आत्मा को पावन बनाने वाला है, कट वाली आत्मा को कट उतरी हुई लेखित रहित बनाता है, और उनको आना भी कर्म पर है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल से ताज बनाए रहे, इससे ऊंच दर्जा और कोई नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं डबल से ताज,
तपस्या कर रहा है कोई, इसका मतलब कर्म प्रधान है तो तपस्या करे, नहीं तो परमात्मा, अगर परमात्मा का स्वरूप बन गया या देवता बन गया तो देवता क्या तपस्या करते हैं? जब शत्रु प्रधान बन गया, संपूर्ण बन गया तो तपस्या करने की दरकार दरकार नहीं रहती। साधना तब तक की जाती है जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तब तक साधना करने की दरकार है। और जब इंद्रियां सद गई, कंट्रोल में हो गई, तो कोई प्रकार की साधना की दरकार नहीं है। तो दिलवाड़ा मंदिर में देखो, क्या देखो, आदिदेव का काला चित्र है, ऊपर में सोने के बने, ऊपर में मन, जब उनकी ऊंची स्टेज हो जाती है पुरुषार्थ करते करते तपस्या करते करते, तो उनको ऊंची स्टेज में बैठाया गया। जब ऊंची स्टेज में कोई चीज बैठाई जाती है तो देखने वाले किधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे ना, नीचे समझ के देखेंगे या नीचे समझ के देखेंगे, तुम क्या समझ के देख लीजिए, जो घृणा करने वाले होंगे वो न चाहते हुए भी उसको ऊपर ये देखेंगे। जगदम्बा महानिरिणी है, आदि देवी की बेटी सरस्वती है, क्या कहा? आदि देवी की बेटी सरस्वती है, वो कम मंदिर तो अनेक बनाए हुए, यादगार मंदिर बने हुए, इसका मतलब आदि देवी।
तो गीता मंदिर जो बने हैं किसकी यादगार है? जरूर गीता का ज्ञान किसी ने आकर के सुनाया होगा ना? गीता मंदिर कहो या गीता पाठशाला कहो, ये वो ही कही जाएगी जिसमें भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाए। तो जब गीता ज्ञान सुनाएगा तो सुनने वालों को पता तो होना चाहिए कि गीता माता की रचना करने वाला कौन, माता की रचना कौन करता है? बेटा करता है। तो जरूर चैतन्य में गीता माता भी हुई और चैतन्य में कोई गीता पति भगवान भी हुआ, लेकिन इसको पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ नहीं। बाप आकर के सारे ड्रामा का राज उसको समझा दे कि गीता कौन सी है चैतन्य और गीता माता कौन, तो गीता पति भगवान कौन, तो कौन हुई गीता माता? गीता माता है सबका माई बाप, और धर्मशास्त्र तो बाद के हैं, लेकिन गीता है सबकी माई बाप, तो कौन हुई फिर गीता? आदि देवी। तुम और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो, ये भी अच्छी बात है। बाप को तो याद करते हैं ना, शिव बाबा है आत्माओं का बाप, मरने के समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना है तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे। स्वर्ग में आकर के महाराजा महारानी बन जाएंगे ये नहीं कहा, शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे कोई दूसरा याद ना आएगा तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे, ये कोई कम बात हो रही है क्या? क्या कम बात नहीं है? स्वर्ग में आना, स्वर्ग के दूसरे जन्म में आ जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी, दूसरे तीसरे आठवें जन्म में अगर हम आ जाए तो ये बड़ी बात हो गई है, तो छोटी बात हो गई। बड़ी बात ये है कि जो परमात्मा बाप डायरेक्ट आकर के स्वर्ग की रचना रखते हैं, जो नई दुनिया रखते हैं, उस दुनिया में हम आ जाए, यानी इन्हीं आंखों से हम स्वर्ग देखें, ये है बड़ी बात। ये बताया कि बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, ये कोई कम बात हो रही है। माने कितने जन्म के स्वर्ग में, इसी जन्मों में से पहला जन्म है संगमनिधि स्वर्ग, जो परमात्मा डायरेक्ट बाप आकर के जिसकी रचना करते हैं, उसमें जाना कोई कम बात नहीं है। पहले पहले तो अपन को आत्मा नीचे कर, वो है फिर परमपिता परमात्मा और नाम उनका शिव है, आत्मा भी बिंदी रूप है परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट क्या? पार्ट कहाँ बजाया जाता, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में? पार्ट जरूर स्थूल वतन में बजाया जाए, तो परमात्मा पार्ट जब स्थूल वतन में होगा तो परमात्मा पार्टधारी इस स्थूल वतन में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना? का पार्ट है ही पतितों को पावन बनाना, सबसे बड़ा पार्ट किसका? परम पिता परमात्मा का सबसे बड़े से बड़ा पार्ट, और जो पार्ट बजाता है वो पार्ट की फैकल्टी क्या बताई, कौन सा पार्ट बजाता है? पतितों को पावन बनाने ज्ञान सुनाने का पार्ट है, ऐसे नहीं का? कौन सा पार्ट? पतितों को पावन बनाने का पार्ट, भक्ति में मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करता हूँ, दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में, ये भी जाना में पार्ट बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही अशुद्ध कामना है, शैतान पूरी करता है। क्या कहा? अशुद्ध कामनाएं तुम्हारी है वो शैतान पूरी करता है। शैतान कौन? रावण कौन? ये जो ऋषि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं। ऋषि सिद्धि सीखना ये किसका काम है? सिखाना किसका काम है? आदि योगियों का काम है। उस ऋषि सिद्धि से मनुष्य किसको दुख देवे वो कामना मैं पूरी नहीं करता हूँ। जो ऋषि सिद्धि सीखते हैं उस ऋषि सिद्धि से बहुतों को दुख भी मिलता है। अभी सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं, सोलह कला अभी कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। जब तक इस पुराने विकारी दुनिया का विनाश हो तब तक ये पुरुषार्थ चलता ही है। कौन सा पुरुषार्थ? प्रतीत से पावन बने ये पार्ट कब तक चलेगा? क्या एक बार पार्ट चल जाए तो नहीं पूरा होगा? किसी की भी ताकत नहीं है जो कहे कि हम तो सोलह कला संपूर्ण बन चुके हैं। अभी बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया का संग है वो वायुमंडल है, वो वातावरण के बीच में हम रहते हैं, तब तक एक के संग का रंग हमेशा लगता रहे ये हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य आत्माओं में ये परमात्मा से अंतर है कि मनुष्य आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है और परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता है। बड़े बड़े पावरफुल आत्माएं धरती पर आई, बड़े बड़े महात्माएं आए, संत आए, लेकिन सब इस शक्ति में संग के रंग में आकर के नीचे गिरते चले गए। ऊपर कोई नहीं था। एक परमात्मा बात ये है जिसको लेपचेप नहीं लगता है। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म बतन में जाकर के बैठना पड़ेगा। सूक्ष्म बतन में बैठने का मतलब है कि आराउंड पार्टदारी 84 जन्म लेने वाली पूरी आत्मा नहीं बनी। फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा होगी। परमात्मा पाप से तो डायरेक्ट वर्तन लेने वाली नहीं बनी। राधा कृष्ण को वर्षा किससे मिलेगा? परमात्मा पाप से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, देवताओं से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से वर्षा मिलेगा? देवताओं से वर्षा मिलेगा। तो हमको वर्षा किससे लेना है? हम तो वर्षा लेने वाले हैं डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से। सूक्ष्म बतन में जाकर के बैठना पड़े, मूल बतन में तो जा ही नहीं सकते। पहले ब्राह्मण नहीं, पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड से जाएगी ना। पहले कौन जाएगा है? पहले दूल्हा जाए, साजन जाए, फिर सजनिया जाए। दूल्हा कौन? देव बाबा माना बिंदु। बिंदु तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं कहा जाएगा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। तो पहले ब्राइड घूम जाए, तब ब्राइड जाएंगी मूल वतन। मूल वतन निसंकल्पी से, जहाँ कोई संकल्प नहीं, सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा पहले ऐसी स्टेज में कौन जाएगा? ब्राइड घूम, फिर सजनिया जाएंगे। उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूर अंदेश चाहिए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे किसी लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों, उनसे पहले
पहले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूर अंदेश हो जाइए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे सीखेंगे बच्चों प्रति माप के साथ आप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।